रेडियो मधुबन के श्रोताओं को नमस्कार। हर रविवार की तरह मैं लीना महेंद्रे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ पठामी संस्कृतम, जिसके अंतर्गत पिछले रविवार को हमने भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ किया था और कुछ श्लोक पढ़े थे। तो अब अगले श्लोक से आरंभ करते हैं। ये प्रसंग है कि दुर्योधन, जिसके लिए संजय ने राजा दुर्योधन संबोधन का प्रयोग किया है, वह अपने गुरु द्रोण के सम्मुख जा करके पांडवों की सेना का पहले बखान करता है और बाद में स्वयं अपनी भी सेना का बखान करता है। तो आओ पढ़ते हैं अगले श्लोक। धृष्ट केतुश्चे कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो पांडवों की सेना के और भी राजाओं के नाम दुर्योधन गिना रहा है कि यहाँ धृष्ट केतु है, चेकितान है, काशीराज है जो कि काशीराजः च वीर्यवान अर्थात बहुत पराक्रमी काशीराज है, पुरुजित कुंती भोजः च अर्थात पुरुजित और कुंती भोज ये राजे भी हैं, शैब्यः च नरपुंगवः और नरपुंगव अर्थात नरों में श्रेष्ठ ऐसा शैब्य राजा भी यहाँ पांडवों की सेना की ओर से उपस्थित है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो आगे और भी नाम गिनाए कि युधामन्यु है जिसका वर्णन है विक्रांत अर्थात विकट पराक्रम करने वाला, और उत्तमौजः च वीर्यवान् और पराक्रमी उत्तमौज राजा है, सौभद्रो द्रौपदेयः च सौभद्र अर्थात सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदेयः च द्रौपदी के पुत्र वो भी यहाँ हैं और सर्व एव महारथाः ये सारे के सारे महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन आगे कहता है कि हे द्विजोत्तम, ये गुरुद्रोण के लिए संबोधन है, द्विजों में उत्तम अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तो हे द्रोण अस्माकं तु विशिष्टा ये जो हमारी सेना की ओर से जो विशिष्ट योद्धा हैं तान निबोध द्विजोत्तम अर्थात हे द्विजोत्तम अब उनको आप जानिए, निबोध अर्थात आप उनका बोध करिए। नायका मम सैन्यस्य मेरी सेना के जो नायक हैं संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते अर्थात उनकी जानकारी आपको हो, संज्ञार्थम तान उनकी जानकारी आपको हो इस अर्थ से इस प्रयोजन से ब्रवीमि ते मैं आपके सम्मुख आपके लिए उनका वर्णन करता हूँ। ब्रवीमि मैं कहता हूँ और ते अर्थात तुम्हारे लिए यह त्वम शब्द की चतुर्थी की विभक्ति है। दुर्योधन आगे कहता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान आप स्वयं मेरी सेना के एक बड़े सेनानायक हैं, भीष्मः च अर्थात भीष्म भी हैं और कर्णः च कर्ण भी है और समितिंजय अर्थात युद्ध में सदा जीतने वाला, तो कृपश्च समितिंजयः ऐसे कृपाचार्य जो युद्ध में सदैव जय प्राप्त करते हैं। अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च अर्थात अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सौमदत्तिः अर्थात सोमदत्त राजा का पुत्र जिसका नाम था भूरिश्रवा ये सारे कौरव सेना के महारथी हैं। तो ये सारे नाम दुर्योधन गिनाता है आचार्य द्रोण के सम्मुख और यहाँ कई सारे नाम लिए गए हैं। तो एक पुराना पढ़ा हुआ नियम मैं दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ कि संस्कृत में जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के उत्पन्न होने का संबंध दिखाना होता है तो नए व्यक्ति का नाम भी पहले व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है और उसके लिए कुछ खास नियम होते हैं, कुछ खास प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो ऐसे कई नाम यहाँ पर आए हैं, उनको एक बार दोहरा लेते हैं। एक नाम है शैब्य, अर्थात शिबी राजा का पुत्र या शिबी देश का राजा, दोनों अर्थों में शैब्य नाम लिया जा सकता है। दूसरा नाम है सोमदत्ति, अर्थात जो सोमदत्त का पुत्र है उसका नाम पड़ा सोमदत्ति, जो कि कौरव सेना के महारथी भूरिश्रवा का नाम है। मैं फिर से स्मरण दिलाती हूँ कि जिस प्रकार सोमदत्त से सोमदत्ति हुआ, उसी प्रकार दशरथ से दाशरथी ये नाम राम के लिए होता है। और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, तो सुभद्रा के कारण उसका नाम पड़ता है सौभद्र। उसी प्रकार सुमित्रा से सौमित्र, जो कि लक्ष्मण का नाम है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, तो उन सबों के लिए द्रौपदेय यह नाम कहा जाता है। जिस प्रकार कुंती के पुत्र के लिए कौंतेय कहा जाता है और राधा के पुत्र के लिए राधेय कहा जाता है, उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों के लिए द्रौपदेय, और स्वयं द्रौपदी का नाम भी उसके पिता द्रुपद के नाम के कारण पड़ता है, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। इस प्रकार अब अगला श्लोक देखते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से आगे कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य च बहवः शूरा, अन्य भी बहुत सारे, बहवः कई सारे शूरवीर योद्धा, मदर्थे मत अधिक अर्थे मेरे खातिर, मेरे प्रयोजन के लिए, मदर्थे त्यक्त जीविताः, ये बहुवचन हो गया। लेकिन त्यक्त जीवित का अर्थ क्या हुआ कि जो अपने जीने की आशा छोड़ चुका है, क्योंकि वह युद्ध भूमि में दुर्योधन के लिए लड़ने के लिए आया है, तो वह अपने जीवित रहने की आशा को पीछे छोड़ करके ही आया हुआ। मदर्थे त्यक्त जीविताः, उन्हें यह चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूँगा या नहीं, वह दुर्योधन का प्रिय करने के लिए इस सेना में उपस्थित हुए हैं। ऐसे कई शूरवीर योद्धा दुर्योधन की सेना में उपस्थित हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः, और वे कैसे हैं, नानाविध शस्त्रों के प्रहार में कौशल्य रखते हैं। तो त्यक्त जीविताः यह समास हो गया, जिसने जीवित रहने की आशा छोड़ दी है ऐसा व्यक्ति। और नाना शस्त्र प्रहरणाः यह भी एक समास है, नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में जो सक्षम है ऐसे व्यक्ति। और ये सारे के सारे सर्वे युद्ध विशारदाः, ये सारे युद्ध की कला में निपुण हैं। अब युद्ध विशारदाः यह भी एक समास हो गया। मित्रों, तुमने देखा कि संस्कृत में संधि और समास ये दो ऐसी युक्तियां हैं जो कि हमें 2, 3 या 4 शब्दों को भी एक साथ मिलाने की युक्ति बताते हैं, और इनके कारण संस्कृत भाषा बड़ी ही सुगठित और संक्षेप कम से कम शब्दों में हो जाती है, जो कि भाषा का एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रकार की संधियां और समास हम अपनी अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रयोग में लाते हैं। हालांकि सारे के सारे समास हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी कई लाते हैं। तो इस कारण हमारी भारतीय भाषाओं में भी संस्कृत का यह गुण प्रचुरता में उपलब्ध है, जिससे भाषा का सौंदर्य भी निखरता है और भाषा का संक्षेप भी किया जा सकता है, जो कि संवाद के लिए, गद्य लेखन के लिए, पद्य लेखन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो आओ, इन खूबियों को समझते हुए हम अपने अगले पाठ भी पढ़ते चलेंगे। तुम सुनते रहो पठामि संस्कृतम्। सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो, नमस्कार।